ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा के इस बेहद के घर में आज सभी भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हैं और विशेष कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, और वो कार्यक्रम है कि ईश्वरीय अलौकिक दिव्य शादी क्या होती है, जिसको शादी नहीं लेकिन समर्पण समारोह कहते हैं, वो कैसा होता है, उसको देखने का सौभाग्य, उसको अनुभव करने का सौभाग्य आज से लगातार 3-4 दिन तक आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए सर्वप्रथम जो भी हमारी मीठी प्यारी छोटी बहनें हैं, जो आज विशेष जीवन को अर्पण करने के लक्ष्य से यहां पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले उन बहनों का बहुत हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो, अभिनंदन हो, बहुत बहुत बधाई आप सबको। और जो भी इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए पधारे हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है, बधाइयां। विशेष जो परिवार वाले आए हैं, जिन परिवार वालों ने भी ये कन्याओं को समर्पित होने के लिए सहयोग दिया, साथ दिया, उनका उमंग उत्साह बढ़ाया, आप सबको शायद अभी पता नहीं होगा कि कितना बड़ा पुण्य का कार्य आप सभी ने अपने भाग्य में जमा कर लिया है। आने वाले समय में उसको आप महसूस कर पाएंगे। और विशेष जो हमारी बड़ी बहनें हैं, जो इतने सालों से सेंटरों को संभाल रहे हैं, जिन्होंने इन कन्याओं की इतनी सुंदर परवरिश की है कि जिसके कारण ही आज ये कन्याएं ये हिम्मत का कदम उठा करके आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रही है, तो ऐसी हमारी वरिष्ठ दीदियों को भी बहुत बहुत बधाइयां हो, जो आप सभी ने जितनी भी कन्याएं आपके सेंटर से समर्पित होने जा रही है उनके अंदर ये बल भरा, शक्ति भरी और उन्हें उमंग उत्साह दिलाया कि आज वो जीवन को अर्पण कर सकती है। जब भी मैं कोई भी कन्या को समर्पित होते हुए देखती हूं तो मुझे शास्त्र में वो बात याद आती है कि शास्त्र के अंदर बहुत सुंदर उसका वर्णन है कि जब सती ने शिव की इतनी आराधना की, भक्ति किया और शिव जी को रिझाया, ऐसी नौधा भक्ति किया और उस नौधा भक्ति करके शिव जी को प्रसन्न किया, परंतु वहां कुछ कारण से उनका जीवन का अंत हो जाता है और उसके दूसरे जन्म में वो पुनः जन्म प्राप्त करके उस शिवजी के साथ ब्याह रचाती है और पार्वती बनकर के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करती है उस कैलाश पति के साथ। ये शास्त्र की बात मुझे याद आती है कि सचमुच ये इस समय में कितना एक्यूरेट यादगार है कि ऐसी अनेक सतियों ने अपने पूर्व जन्म में नौधा भक्ति किया होगा, शिवजी को रिझाया होगा, तब पुनर्जन्म प्राप्त करके इस जन्म में वो उस शिवजी के साथ बैठने का, पार्वती बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। दुनिया में हर कोई कन्या को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। शिवजी के साथ ब्याह रचाने का संकल्प उसी कन्या को आएगा जिसने अपने पूर्व जन्म में नौधा भक्ति शिव की किया होगा, काशी कलवट जिसने खाया होगा और इतना नौधा भक्ति करने के बाद ही आज इस जन्म में शिवजी ने वो सौभाग्य उसको दिया कि वो उसके साथ ब्याह रचा करके उसके साथ बैठ सकती है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेंटर पर कई बहनें आती है, कई कुमारियां आती है, हर एक के मन में समर्पित होने का भाव जागृत नहीं होता है। कई लोग आज भी ये सोचते हैं हम नौकरी करें, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बाबा की सेवा भी जरूर करेंगे, ये लक्ष्य रहता है उनका, लेकिन समर्पण अर्पण होना ये भाव जागृत तब तक नहीं होता है जब तक उसने पूर्व जन्म में नौधा भक्ति नहीं किया। तो आज मैं ये बहनों को इसीलिए बधाई देना चाहती हूं क्योंकि उसके पूर्व जन्म में भी आप सभी बहनों ने कितनी शिव की नौधा भक्ति किया होगा और इसीलिए शिव को ऐसा रिझाया, उससे शायद यही वरदान मांगा कि बस मैं कोई जन्म में आपकी सेवा कर सकूं, ये वरदान मांगा होगा। और इसीलिए साक्षात शिवजी जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो उन्हीं कन्याओं को चुनते हैं, निमित्त बनाते हैं, उनके अंदर ये भाव पुनः जागृत होता है और वो अपने जीवन को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाती है। कई बार मैं परमात्मा के महावाक्य सुनती हूं और उस महावाक्य के अंदर भगवान ने कई बार ये कहा है कि भगवान ने किसको चुना। आज दुनिया के अंदर अनेक ऐसी कुमारियां होगी, पढ़ी लिखी होगी, बहुत ज्यादा डिग्रियां प्राप्त की हुई होगी, लेकिन शिवजी ने जिसको पसंद किया वो कन्याएं कैसी साधारण लेकिन श्रेष्ठ, पद्मा पदम भाग्यवान, जो शिव ने साक्षात पसंद करके अपने साथ गद्दी पर बिठाने का ये सौभाग्य दिया। इसीलिए बाबा कई बार टीचर्स को कहते हैं कि गुरु भाई है, गुरु भाई यानी साथ में गुरु गद्दी को के ऊपर बैठने का अधिकार जिसको प्राप्त हुआ वो कितना ऊंचा सौभाग्य है। इसलिए कहा कि शायद उस बात को आज हम नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में हमें ये साक्षात्कार होगा कि किस जन्म में हमने वो नौधा भक्ति किया था, और इसीलिए कुछ भी और बातें सोची नहीं, दुनिया में जाने का संकल्प नहीं आया, लेकिन बाबा की सेवा करने का ही संकल्प उनके मन में स्फुरित होता है, और इसीलिए इतना बड़ा डिसीशन वो अपने लाइफ के लिए ले लेती है कि बस मैं तो शिव की ही बन करके रहूंगी, शिव की ही वो पार्वती बन करके इस संसार के अंदर रहूंगी, और पार्वती बन करके अनेक आत्माओं के जीवन का कल्याण करके उस सौभाग्य को प्राप्त करूंगी जो उसके साथ गद्दी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए ऐसी पार्वती बनने का आज आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई। पार्वती कहो या साक्षात वो शिव शक्ति कहो, कि जिस शिव शक्ति का गायन हमेशा कंबाइंड रूप में ही होता है, जितनी भी संसार में देवियां हैं वो सारी देवियों को अगर देखते हैं तो शिव शक्ति के रूप में ही उनका गायन होता है, पूजन होता है, उनको इतना ऊंचा स्थान दे दिया गया और उनको सिद्ध बता दिया गया कि आज तक भी संसार के अंदर वो शिव शक्तियों का गायन कितनी श्रद्धा से, भावना से सारे संसार की आत्माएं और उसमें भी विशेष भारतवासी उस श्रद्धा के साथ, भावना के साथ उनकी पूजा करते हैं। कितने भक्तों को हम देखते हैं कि जहां पर भी देवियों के पीठ है, जहां पर भी वो देवियां पहाड़ों पर विराजमान है, भक्त कितना पैदल करते हुए कहां कहां से जाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कितना आराधना करते हैं, कितना कष्ट जीवन के अंदर उठाते हैं उस शिव शक्ति को रिझाने के लिए, क्योंकि वो शक्तियों ने ही शिव को रिझाया, तो सोचते भक्त भी कि शायद ये माध्यम से जाना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट शिव जी को रिझाने की ताकत उनमें नहीं होती है, लेकिन शायद इन शक्तियों के माध्यम से उस शिव परमात्मा को प्रसन्न करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहा चाहे शिव शक्तियों के रूप में कंबाइंड स्वरूप में गायन हो, चाहे पार्वती बनकर के शिव जी के साथ बैठने का सौभाग्य हो, ये संगम युग पर हमें ही प्राप्त होता है। दूसरा, इस ईश्वरीय जीवन के अंदर जब कदम रखते हैं तो ये ईश्वरीय जीवन के अंदर कितनी अखुट प्राप्तियां हैं, कितनी अनंत महिमा, जो भगवान भी गाते हैं सन्मुख आकर के, और इसीलिए जब एक एक बात को स्वमान की रीति से भी अगर हम लेते जाएं, तो जैसे हर दिन अपना यही महसूस करेंगे कि धन्य हो गया हमारा जीवन, गदगद महसूस करेंगे अंदर में कि कैसा सुंदर सौभाग्य हमने प्राप्त किया बाबा के साथ का, ये कंबाइंड जीवन जीने का। तो इसीलिए ये जीवन की महिमा कोई कम नहीं है। मैंने कई बार जीवन के अंदर साक्षात ये अनुभव किया है कि कई बार जैसे वो सामने आकर के इतना दुलार करते, इतना प्यार करते हैं, जो हथेली पर पालते हैं, अपने नैनों में समा करके वो जैसे सारे विश्व के अंदर ले जाते हैं। अनेक आत्माओं की सेवा जिसके विषय में हमने कभी सोचा नहीं होता है, या जो शक्ति क्षमता हमारे में नहीं होती है, लेकिन वो शक्ति क्षमता भर करके ऐसा योग्य पात्र बना देते हैं और ऐसे लोगों के सामने खड़े कर देते हैं जो हम निमित्त बन करके बैठ जाते, पता नहीं कोई बातें ऐसी निकाल देते हैं जो हम खुद भी उस वक्त साक्षी होकर के देखते हैं, क्या सचमुच ही हमने कहा, हमने बोला। तो इसीलिए कई बार जो बाबा कहते हैं कि कई ऐसी विशेष आत्माएं जब आ जाती है सेंटरों पर, और अगर उसको अटेंड करने वाले में इतनी शक्ति क्षमता नहीं होती है, तो बाबा उसको निमित्त बना करके, उसको ये माध्यम से बाबा ऐसा तीर लगा करके जाते हैं जो वो आत्माएं सोचते हैं कि इतनी छोटी बहनें और कैसे ये इतनी बड़ी बातें कह देती हैं। मुझे आरंभ के एक अनुभव याद आता है कि जब मैं समर्पित हुई और थोड़े ही दिन हुए थे यहाँ माउंट आबू में ही समर्पित हुई थी 1980 में, और उस समय मनमोहिनी दीदी थी। तो दीदी ने हमको कहा कि थोड़ा दिन तुम यहाँ रहो और सेवा करना सीखो। तो हमें कहा आप शीलू बेन के साथ जाना और सीखना कैसे वो क्लास कराती है, कैसे वो शिविर कराती है, ये सीखना। तो मैं नित्य जाने लगी, और एक समय ऐसा आया कि एक बैंगलोर का ग्रुप आया था, लगभग 25 इंजीनियर्स। उस जमाने में योग भवन में शिविर होती थी और 25 लोग आ जाए तो बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है ये महसूस होता था। तो जैसे ही वो 25 इंजीनियर्स आए, शीलू बेन ने सारी शिविर कराई, और कराने के बाद जो है उनका ट्रेन के कनेक्शन के कारण एक दिन एक्स्ट्रा रुकना था। अब दूसरा ग्रुप इधर आ गया जो हिंदी शिविर वाला था, तो शीलू बेन ने हमको कहा ऐसा है कि ये ग्रुप एक दिन एक्स्ट्रा रुक रहा है, तो आप उनको क्लास कराएगी? हमने कहा ठीक है, हाँ कर दिया। इसलिए हाँ किया क्योंकि ये बात अंदर में बहुत पक्की थी कि बाबा हमेशा ये कहते, ना करने वाला नास्तिक, हाँ करने वाला आस्तिक। तो मुझे नास्तिक नहीं बनना है, मुझे आस्तिक बनना है। तो मैंने हाँ कर दिया, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या बोलना होता है। पहली बार जिंदगी में लेक्चर देने का अवसर था, तो इसीलिए जब गए तो शीलू बेन को पूछने गई मैं, कितना समय बात करना होगा उन लोगों से, कितना समय क्लास कराना होगा। तो कहा तुम 6:30 बजे जाना, 8 बजे तक क्लास कराना। अब 1.5 घंटा बोलना है? तो बड़ा आश्चर्य हुआ, 1.5 घंटा हम क्या बोलेंगे? पहली बार कभी बोला ही नहीं हमने उसके पहले, और सारे साइंटिस्ट हैं, कैसे बोलेंगे? लेकिन ना तो करना नहीं, हाँ करना। फिर मन में आया कि चलो पूछती हूं कि क्या समझाना होता है। मैं पूछने गई कि उनको क्या बताना होता है, तो कहा कि आत्मा परमात्मा ये सारी शिविर तो हमने करा दी है। हमने कहा फिर हम क्या कराएंगे, तो कहा तुम काल चक्र कराना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये काल चक्र। अब काल चक्र तो मैंने सुना भी नहीं है, कभी सुना ही नहीं, शिविर में वो लेसन पहले तो आता ही नहीं था। तो मैं सो ही नहीं पाई रात में, मैं सोचती थी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, धीरे धीरे बोलूंगी तो भी 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, है ना, 20 मिनट में तो पूरा हो जाएगा। अगर कमेंट्री थोड़ी लंबी भी खींचा मैंने धीरे धीरे बोलकर, तो भी आधा घंटे से ज्यादा मेरे पास मैटर नहीं है। तो फिर मैं लगभग 10 बजे फिर शिलू बेन के पास गई कि अगर मेरा जल्दी पूरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो कहा कोई बात नहीं, त्रिमूर्ति ले लेना। तो मैं सोचा ब्रह्मा विष्णु महेश, स्थापना पालना विनाश, पूरा हो गया, उससे ज्यादा तो मुझे कुछ आता ही नहीं। फिर रात भर मेरे को नींद नहीं आई, आखिर रात को 1 बजे मैंने अंदर में सोचा मैं सुबह जाऊंगी और उनको कहूंगी आई एम सॉरी मुझे नहीं आता है, और वापस आ जाऊंगी, है ना, ये कहकर वापस आ जाऊंगी। उस समय मुझे एक आवाज सुनाई दी कि तुम्हें बाबा पर विश्वास है। मैंने कहा है। निश्चय है? मैंने कहा है। कहा छोड़ दो बाबा पर। मैंने कहा छोड़ देती हूं लेकिन नींद तो आवे। बस जैसे ये कहा ना, 1 सेकंड में नींद आ गई। सुबह जैसे ही 3:30 बजे का रिकॉर्ड बजा, मैं उठ करके स्नान करके योग में गई। जैसे ही बैठी योग में तो मैं सोचा बाबा अमृत वेले मदद करता है, लेकिन जब बाबा को देखती रही तो मदद तो मिली नहीं मुझे। तो मैं सोचने लगी बाबा तो कहता है अमृत वेला मदद करता हूं, मुझे तो कोई मदद मिल ही नहीं रही है, कोई विचार ही नहीं आ रहा है। फिर आया कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी कहूंगी मुझे नहीं आता है आई एम सॉरी और वापस आ जाऊंगी। जैसे ये बात कही दोबारा ये आवाज सुनाई दिया तुम्हें बाबा पर विश्वास है। मैंने कहा है। तो कहा छोड़ दो बाबा पर। मैंने कहा छोड़ देती हूं लेकिन मेरा योग तो लगे, मेरा योग ही नहीं लग रहा है। जैसे ये कहा उसके बाद मैं कहां गायब हो गई मुझे पता नहीं। 4:45 बजे का गीत बजा तब मुझे होश आया। उसके बाद वापस मैं अपने कमरे में आई, क्यों आ रही हूं मालूम नहीं, स्नान पानी तो कर लिया था, लेकिन कमरे में जैसे आई कबट खोला 2 किताब वहां पड़ी थी इंग्लिश में। 3:30 बजे मैंने जब कपड़े उठाए कुछ नहीं था, 4:45 बजे जब आकर देखती हूं 2 किताब पड़ी है। जब खोल के देखती हूं तो काल चक्र के ऊपर इतना साइंटिफिकली समझाया हुआ, इतना अच्छा लगा। मैंने सोचा किसने रखा ये, मैंने तो रखा ही नहीं है। शीलू बेन के रूम में गई, पहले कमरे वालों से पूछा तो कहा नहीं हमने नहीं रखा। मैंने सोचा जरूर शीलू बेन ने रखा होगा। शीलू बेन को पूछने गई आपने ये किताब रखी, कहा नहीं मैं तो तेरे कमरे में आई नहीं, तो किसने रखा। चलो जिसने भी रखा हो बहुत अच्छा किया। मैं पढ़ने लगी, बहुत अच्छा लगा, इतना साइंटिफिकली समझाया हुआ था उसमें। उसके बाद मैं 6:30 बजे ऐसा लगा एकदम तैयार, किताब छोड़ करके मैं गई। जैसे ही वहां बैठी और उन लोगों को देखा कि सब कुछ भूल गई, एक भी शब्द याद नहीं आए, एक भी शब्द याद नहीं आए। और जब एक भी शब्द याद नहीं आया तो मैं उनका चेहरा देख करके इतनी नर्वस होने लगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सफेद लाइट होगी मैं कहूंगी आई एम सॉरी मुझे नहीं आता है और मैं चली जाऊंगी। तीसरी बार वही आवाज सुनाई दिया, तुम्हें बाबा पर विश्वास है? मैंने कहा है। कहा छोड़ दो बाबा पर। मैंने कहा अच्छा छोड़ देती हूं। और जैसे ही मैंने कहा छोड़ देती हूं, उसके बाद कब सफेद लाइट हुई, कब माइक मेरे सामने आया, कब मैंने बोलना शुरू किया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब पता चला तो देखा घड़ी में 8 बजा है। 1.5 घंटा मैंने क्या बोला मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बाबा की कमाल है कि वो कभी भी हमें नीचा नहीं दिखाता है लोगों के सामने। ऐसी शक्ति भर देता है, या खुद आकर के जब देखता है कि बच्चे असमर्थ है तो आकर के वो अपना कार्य करण करावनहार करा के जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं उठी तो उन सभी ने मुझे यही प्रश्न किया, बहन जी आप कितना पढ़े हो, इतना साइंटिफिक आपने कैसे समझाया? अब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला है 1.5 घंटा। मैंने कहा बाबा करवाता है, करके मैं वापस आ गई कमरे में देखने के लिए कि मैं फिर से वो किताब पढ़ूं उसमें क्या लिखा हुआ है। जब फिर से आकर के देखने लगी, किताब कहां गायब हो गई पता ही नहीं, कहां से आई थी 5 बजे, 4:45 बजे। और 8 बजे जब मैं ढूंढती हूं कि भाई यहीं रख के गई थी, मैं कमरे वाले से पूछा, मैंने कहा आपने किताब देखी? कहा नहीं हमने तो नहीं देखी। तो कहां से वो किताब आई थी और कहां चली गई पता ही नहीं। उसके बाद लाइब्रेरी में जाकर कितनी बार मैंने वो किताब को ढूंढने का प्रयत्न किया। वर्ल्ड रिन्यूअल था यह तो मालूम था, लेकिन वो वर्ल्ड रिन्यूअल ढूंढने का प्रयास किया, कौन सा साल था मालूम नहीं, लेकिन बहुत बार ढूंढा, दोबारा वो किताब मेरे हाथ में नहीं आई। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि बाबा करण करावनहार कैसे कराता है, लेकिन कभी अपने बच्चों को किसी के सामने भी नीचा नहीं दिखाता है। इतना बाबा के प्रति भी जब विश्वास हमारा है, जब निश्चय बुद्धि है, तो निश्चय में जैसे बाबा कहते परसेंटेज कभी नहीं होती है। पुरुषार्थ में नंबरवार जरूर होते हैं, लेकिन निश्चय में नंबरवार नहीं हो सकते हैं। निश्चय माना निश्चय, या निश्चय है या संशय है, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो इसीलिए जिस निश्चय के साथ हमने इस जीवन में कदम रखा, उसी निश्चय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो बाबा हर मोड़ पर हमारा मददगार है और बंधा हुआ है मदद करने के लिए। वो कभी भी किसी भी समय ये नहीं कि कहाँ चला गया बाबा, आप मेरे बाजू में नहीं है, ये फीलिंग तक आने नहीं देता है। लेकिन हमेशा अपने को कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कराता है कि मैं और मेरा बाबा सदा साथ है ही है। ये हमेशा एक अंदरूनी फीलिंग महसूस कराते जाते हैं, और बाबा के संग संग एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आज भले हमें 45 साल होने को आए, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि हर दिन एक नया दिन है, हर दिन कुछ न कुछ सीखने का ही दिन है, आगे बढ़ने का ही दिन है। ये फीलिंग बाबा अब तक भी दे रहे हैं और इसी बल और इसी शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए हमारी बहुत बहुत दिल की शुभ भावना, शुभकामना आज हम सभी की छोटी बहनों के साथ है कि आप भी अपने जीवन के अंदर सदा आगे बढ़ते रहो, एक एक कदम में बाबा का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते चलो, निरंतर बाबा का नाम रोशन करते चलो। यही हमारी दिल की शुभ भावना, शुभकामना और दिल की दुआएं आप सबके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।